बाबा एक श्रीमद की बात पूछनी है, एक श्रीमद की बात पूछनी है बाबा। क्या है कि जो कोई गीता पाठ है कम उम्र की माता है, तो वो जो ये महीने संगठन होते है ना, नासिक संगठन होते है ना, वो संगठन में आने के लिए शुक्रवार को ही मिनी मधुबन में आना पड़ता है। तो उसके साथ आने के लिए
शुक्रवार को मिनी मधुबन में आना पड़ता है,
माना
माता का संगठन शुक्रवार होता है,
गीता पाठशाला में आना पड़ता है, मिनी मधुबन में आना पड़ता है। कौन से दिन?
मासिक संगठन के दिन,
मासिक संगठन के अगला दिन,
अगला दिन शुक्रवार जो होता है
उस दिन।
अच्छा, ये यहाँ ऐसा नियम बनाया कि जो कौन सा चौथा चौथा सप्ताह, चौथा शुक्रवार, अच्छा हाँ जी,
वो संगठन में आने के लिए उसके आगे ही माता का संगठन होता है ना अगले दिन।
हाँ,
उस हिसाब से वो कन्या तो कम उम्र की है ना, जो गीता पाठ करता आने वाली युगल जोड़ी है।
हाँ,
तो वो तो अकेली होती है कि वो माता के संगठन में कोई आने के लिए नहीं होते उसके साथ, तो वो आ सकती कि नहीं सकती अकेले, तो गीता पाठशाला वाली कम उम्र की माता
मिनी मधुबन में। गीता पाठशालाएं तो कम उम्र की माताओं को तभी दी जाती है जबकि दोनों युगल क्लास में बैठे हैं, दोनों युगल साथ साथ रहे ईश्वरीय प्रवृत्तियों में। अकेले के लिए तो ठीक नहीं है।
नहीं बाबा, यहाँ मेरी मधुबन में माता के संगठन में अटेंड करने के लिए
कोई माता साथ में मिलती है तो आए।
नहीं नहीं, नहीं तो नहीं आए बाबा।
नहीं तो नहीं, प्योरिटी इज फर्स्ट नहीं है, अरे पुरुषार्थ फर्स्ट है वो तो ठीक है, लेकिन पुरुषार्थ में भी प्योरिटी का पुरुषार्थ इज फर्स्ट है या नहीं? तो जहां प्योरिटी में तराप आने की संभावना हो जाए वो काम करना है या नहीं करना है? नहीं करना, कुछ भी हो जाए चिंता नहीं। और
बाबा हाँ, में बोला है शिव बाबा जो कर्ण घोर ब्राह्मण होकर के अभी आए हैं, शिव बाबा को ऐसा कर्ण घोर क्यों बोला है?
क्यों बताया बताओ? जो कपड़े धोने को मिलते हैं शिव बाबा को, वो 84 जन्म पुराने कपड़े मिले हैं या नए नए कपड़े मिलते हैं?
है
पुराने कपड़े मिलते हैं। जो भी आत्माएं पढ़ाई पढ़ाने के लिए स्टूडेंट मिलते हैं वो वानप्रस्थी अवस्था के हैं या नौजवान हैं? तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है, कैसे है? अरे तो बाबा को तो साफ फटा टूटा मिलता है, इसलिए कर्मी और ब्राह्मण है। वैसे भी कहते हैं कम खर्च बालानसी, अगर जिस यासियों की पुरानी चीजों से यज्ञ में काम चल सकता है तो नई नई चीजें खरीद करके यज्ञ चलाना जरूरी है? है
नहीं,
नहीं।
बाला
है
84 जन्म पूरा होने से फिर मानुष्तन आत्मा स्वर्ग जाते हैं या पृथ्वी में फिर मानुष्तन में प्रवेश करेंगे?
84 जन्म पूरे होने के बाद आत्मा
मनुष्यतन में
या फिर आता है कि नहीं
आता है कि या डायरेक्ट स्वर्ग करें?
84 जन्म पूरे होने के बाद हर आत्मा को परमधाम जाना पड़े, जिनके 84 जन्म होंगे वो ही आकर के प्रवेश करेंगे। दूसरे बाद में आएंगे। और
सांप है ना, एक विषैला होता है ना, कि कोई सांप को नाग पंचमी पूजा करते हैं,
कोई सांप
विषैला होता है,
विषैला होता है,
हिंदू धर्म में ऐसा रस्म है नागपंचमी में उसका पूजा करते हैं,
उसकी पूजा करते हैं। हाँ
विषैला होती है वही पूजा क्यों करते
हैं? पूजा करते हैं। हाँ
इसका अर्थ
है, इसका अर्थ यही है कि विषैला होते हुए भी वो शंकर जी के गले का हार बन जाता है, और शंकर की पूजा करते हैं तो उस नाग की भी पूजा हो जाती है। ये संग के रंग का प्रभाव है। आज तो मुरली में आया, बाबा ने पूछा भी, दिमाग में नहीं आया। जो पतित से पतित तमो प्रधान हो जाते हैं, बड़े विषैले हो जाते हैं, विषैली वृत्ति को छोड़ ही नहीं पाते, वो भोगवादी वृत्ति छूटती ही नहीं, अधीर हो जाते हैं, उनको ही बाप आकर के पढ़ाते हैं। कौन है? है वो शिव बाबा के गले के नाग कौन है? रुद्रमाला के मन के छोड़ नहीं सकते, गले पड़ गए और बाबा छोड़ देंगे? हैं? बाबा गले में से निकाल के फेंक देंगे? फेंकेंगे नहीं? हाँ हाँ।
बाबा इस तरह मधुबन में हर ब्राह्मण बच्चों के साथ बैठ करके बहुत प्यार से भोजन स्वीकार किया।
हाँ?
भक्ति मार्ग में इसके क्या यादगार बनती है?
भक्ति मार्ग में मंदिरों में खिलाते नहीं भगवान को, भोग नहीं लगाते
हैं। भगवान को खिलाते हैं, बच्चे भी साथ में बैठे खा रहे
हैं। हाँ मंदिरों में भोग लगाया जाता है, उस भोग के साथ साथ बच्चे जो भक्त हैं वो भी खाते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में जाए देखो जाके। और
फिर भक्तिनगर का संस्कार कुछ कहने के लिए बोला, फिर ये धुन बजा करके ये तो भक्तिनगर का संस्कार दिखाई दे रहा
है। क्या क्या क्या?
ये तो गाना है ना बाबा, जो गीता का श्लोक है ना,
गीता का श्लोक। अब वो तो गीता का श्लोक इसलिए बजाया गया कि तुम आपस में बातें न करो, कम से कम गीता के श्लोक कान में पड़े तो उन गीता के श्लोकों को ज्ञान के आधार पर अर्थ निकालो। सारी गीता जो है वो सतोप्रधान द्वापर युग में लिखी गई है या सतो रजो तमो प्रधान युग में लिखी गई है, तो सच्ची होगी या झूठी होगी? सच्ची गीता है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन करने वालों ने झूठा कर दिया है। अभी उसके सच्चे इंटरप्रिटेशन ज्ञान के अनुसार निकल रहे हैं तो नहीं सुनना चाहिए, है? सुनना चाहिए, क्योंकि इस गीता से ही आदि में भी सेवा हुई थी। भक्ति मार्ग की गीता बैठ करके सुनाते थे, अर्थ करते थे, जो आदि में सुअंत में भी इस गीता से जो बाबा ने बोला है तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। कब चलेगा? जब गीता के अनुसार उनको अर्थ बैठ करके बताएंगे कि बाबा जो बोलते हैं वो ही बातें गीता में सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता में लिखी हुई हैं। ये तो ब्रह्मा कुमारियों ने ज्ञान को उल्टा कर दिया है। शिव बाबा का ज्ञान तो बिल्कुल गीता ज्ञान के अनुसार है। इस गीता से ही सर्विस होगी, बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य भी मानेंगे कि भगवान आया हुआ गीता ज्ञान सुना रहा है। और
बाबा ने बताया धर्म की पूजा भी नहीं होती, मूर्तियां भी नहीं बनती, मंदिर भी नहीं बनती।
हाँ
उसी ब्रह्म बाबा को बाबा ने बताया वो हनुमान और गणेश का पाठ भी उनका ही है, तो उनका कल युग मंदिर भी बना हुआ है, मूर्ति भी बन रही है और पूजा भी करते हैं।
हनुमान को दाढ़ी मूंछ होती है?
मूंछ होता है,
दाढ़ी मूंछ होती है। ब्रह्मा को दाढ़ी मूंछ होती है? फिर ब्रह्मा को पूंछ होती है? जब शरीर छोड़ते हैं तभी पूंछ होती है ना, जब तमो प्रधान बनते हैं तभी पूंछ होती है, कि सतो प्रधान पाठ बजाते हैं तब पूंछ होती है, तमो प्रधान होती है जब प्रवेश करते हैं तब पूंछ होती है। ओ भूल गए,
पूंछ वाले को फिर पूजा क्यों करते
हैं? कमाल है, प्रवेश किस में करता है, संग किसका करता है? जैसा संग वैसा रंग लगेगा या नहीं लगेगा? अरे लगेगा। और हाँ
केदारनाथ में जब गाड़ी आए ना तो उस समय वहाँ पूजा रुका गया तो नेपाल में उसका शिव नेपाल में पड़ता है और नेपाल में पूजा करनी सुन दिया इसका भी हम
क्या 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 केदारनाथ में हादसा हुआ तो क्या हुआ नेपाल में क्या हुआ
सिर पड़ता है
हा?
उसका सिर नेपाल पड़ता है
काठमांडू के भक्तपुर में जो है ना बाबा
हाँ
शिवम जी मंदिर है
हाँ
वो केदारनाथ का सिर बोला है
हाँ
जो बाढ़ आए ना वहाँ पर
हाँ
और उस समय यहाँ पर बहुत बड़ा पूजा हो रहा है
अच्छा
उसके बारे में वहाँ पर जाना आना जब बंद हो गया तब उसका यहाँ भी है बोलकर के यहाँ पूजा करता है
अच्छा वो इस्लामी लोग आकर के यहाँ पूजा करने लगे अरे वही पुजारी लोग जो इस्लाम धर्म से कनेक्टेड हैं वो आकर के यहाँ पूजा करने लगे तो क्या बड़ी बात है यहाँ महाकाली की पूजा नहीं होती है फिर महाकाली जो काली है उससे माया हाथ मिलाती है कि नहीं माया ने हाथ मिला लिया और माया कौन से धर्म की है इस्लाम धर्म की है तो नहीं आएंगे
इधर भी इस्लाम धर्म
तो आएंगे ना अभी नहीं है जब फाइनल परीक्षा होगी तब की बात है और
बाबा एक मुरली में बाबा ने कहा कि मनुष्य है वो चंद्रमा का पार्ट
है
मनु चंद्रमा को कहते हैं
मनु मनु मनन चिंतन मंथन करने वाले का नाम है
चंद्रमा का भी पार्ट ऐसे सुना
और जो मनु मनन चिंतन मंथन करता है उसकी औलाद को कहा जाता है मनुष्य
चंद्रमा को नहीं कहेंगे
हैं
चंद्रमा को नहीं कहेंगे मनु
हाँ अभी चंद्रमा वाली आत्मा प्रवेश करके मनन चिंतन मंथन को मंथन करने में सहयोगी है या नहीं है? है तो सात मनु गाए हुए हैं क्या कहा मनु कितने गाए हुए हैं सात मनु गाए हुए हैं उसमें ब्रह्मा भी मनु है और अब्बल नंबर का मनु है क्योंकि सबसे जास्ती नजदीक कौन है अरे शंकर जी के सबसे जास्ती नजदीक कौन है पार्वती तो फिर भी गोद में बैठी हुई है हैं? है और
बाबा ये देवियों का नरमुंड माला पहनते
हैं
इसका अर्थ क्या
है
मनुष्य का मुंड की मुंडे माला लगाते हैं
देवियां हैं और मुंड काटेंगी तो मुंड लटकाएंगी नहीं है जो मुंड काटेंगी मुंड को ले लिया और देवान को देह को छोड़ दिया तो जो मुंड ले लिया उनका कल्याण हुआ या नहीं हुआ उनका कल्याण हुआ जिनका कल्याण हो उनकी माला नहीं बनेगी बन गई हाँ। ओम शांति हाँ जी
राष्ट्रीय झंडे के ऊपर एक सवाल है कि 1921 में महात्मा गांधी ने ये प्रस्ताव पास किया कि दो रंग का झंडा लागू किया जाए दो रंग का झंडा लागू किया जाए
दो रंग का झंडा हाँ
मगर 10 साल के अंतराल में 1931 में नेहरू का पिता मोतीलाल नेहरू उन्होंने तिरंगा झंडा लेकर संग्राम किया तो इसका
बेहद
का
ज्ञान
के अनुसार क्या मतलब
ओहो विष्णु पहले होता है कि नहीं होता है अरे ब्राह्मणों की दुनिया में पहले पहले पाठधारी कौन है तीन है या दो ही है तीन है पहले पहले दो ही तो है एक हरा कहते हैं सावन के अंधे को सारी दुनिया में क्या दिखाई देता है हरा ही हरा दिखाई देता तो ब्रह्मा बाबा भी धृतराष्ट्र का पार्ट बजाया कि नहीं बजाया है? उन्हें स्वर्ग ही स्वर्ग दिखाई देता था कि कुछ और दिखाई देता था? क्या दिखाई देता था है? अरे उन्होंने जो संकल्प किया उस संकल्प के आधार पर उन्हें दुनिया में हरा ही हरा दिखाई देता था या नरक की दुनिया दिखाई देती थी? हरी 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 हरी। तो अंत मते कहां जन्म लेते हैं है? हरियाली की दुनिया में सतयुग में जन्म लेते हैं। तो पहली मूर्ति तो वो हरा और दूसरा लाल विनाशकारी क्रांतिकारी रंग। तो पहले तो दो ही पार्ट बजाते हैं लंबे समय तक और अंत में क्या होता है? ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हो, तिरंगा झंडा बन जाता है। ये तीन कपड़े हैं, उन्होंने तीन स्थूल कपड़ों का झंडा बनाई दिया। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। अरे कपड़े का झंडा क्या विश्व विजय करता है? कपड़े के झंडे से विश्व की विजय होगी है? नहीं हो सकती। घर घर में लहराए दो, अभी तो गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया क्या, तो अपने घर घर में कपड़े का झंडा लहराए दो, उससे क्या विश्व विजय हो जाएगी? नहीं। वो किसकी यादगार है? ये तीन शरीर रूपी कोई वस्त्र है जिनकी यादगार है तिरंगा झंडा, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। आप कहेंगे ब्रह्मा ने तो शरीर ही छोड़ दिया, ये कैसा तीन रंग में से एक हरे रंग का झंडा, उसकी यादगार नहीं है? ब्रह्मा की तो पूजा भी नहीं होती, ब्रह्मा के तो मंदिर भी नहीं बनते, ब्रह्मा की मूर्तियां भी नहीं बनती। क्यों? क्योंकि जो अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, उन्होंने ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखी, ऐसे ऐसे कर्म किए जो आगे आगे गवर्नमेंट पीछे पड़ेगी, तफ्तीश करेगी तब पता चलेगा क्या कि कैसे इन्होंने ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखी। न पूजा होती है, न मंदिर बनते हैं, न मूर्तियां बनती हैं। वो है पहली मूर्ति, परंतु उसकी पूजा कब होती है? वही ब्रह्मा बड़ी मां अर्थात जगदम्बा नारी चोले में प्रवेश करके पाठ बजाती है। तो जगदम्बा की पूजा होती है या नहीं होती है? होती है। तो वो मूर्ति पहली मूर्ति, उसके बाद विष्णु, उससे ऊपर विष्णु, उसको सेकेंडरी क्यों रखा गया, ऊपर क्यों रखा गया? क्योंकि वो वैष्णो देवी जब तक ना आए तब तक राजधानी स्थापन नहीं हो सकती, वो दूसरी मूर्ति है। और सर्वोपरि वो मूर्ति जिसमें शिव मुकर्रर रूप से आदि से अंत तक प्रवेश करता है, वो तीसरी मूर्ति, सबसे ऊपर वाली मूर्ति। तो ये तीन रंगों का झंडा है, एक है रजो प्रधान हरा रंग, एक है सतो प्रधान सफेद रंग। क्या सात्विकता आ जाती है? सात्विकता का रंग है सफेद, और वो सात्विकता आती कब है? बिना क्रांति के सात्विकता आ जाती है? सारे संसार में खूनी क्रांति होती है, बड़ा खून खराबा तो भारत में होता है। क्या नाम है उस खून खराबे का? महाभारी महाभारत युद्ध है। ऐसा खून खराबा दुनिया के किसी देश में नहीं होता। ऐसी खून की नदियां दूसरे किसी देश में नहीं बहती कभी भी। और जब तक वो अति नहीं होती है तब तक ये खून करेजी खून रेजी की दुनिया का अंत नहीं होता। लेकिन वो खून रेजी स्थूल में बाद में होगी कि पहले सूक्ष्म में होती है संकल्पों में। ये ब्राह्मणों की दुनिया में पहले संकल्पों की खून रेजी होती है। और संकल्पों की खून रेजी में ढेर के ढेर अनिश्चय बुद्धि मौत हो जाती है। फिर निश्चय बुद्धियों की दुनिया शुरू होती है। कितने निकलते हैं है? जो नई दुनिया की पहली पारिवारिक इकाई बनते हैं कितने? आठ निकलते हैं। फिर एक के बाद एक, एक के बाद एक संख्या बढ़ती जाती है। और
बाबा ऐसा दूसरा पॉइंट है, भीलवाड़ा मंदिर में आदि देव का चित्र है, नीचे काला दिखा रहे हैं, अचलगढ़ में सोने का रखा है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर स्वर्ग है, यह है हमारा।
हाँ दोनों ही यादगार है। नीचे माने दिलवाड़ा में, दिलवाड़ा में काला चित्र रखा है,
अचलगढ़ में सोने
का। वो काला चित्र जो है वो तमो प्रधान स्टेज की यादगार है या सात्विक स्टेज की यादगार है? तमो प्रधान स्टेज की यादगार है। और वो चित्र भी सामने रखा है, एकदम गुफा में चले जाओ कोने में रखा है। कहाँ रखा है? है? अरे कहाँ रखा है? कोने में रखा है, सामने से कुछ नहीं दिखाई देगा, काला है कि गोरा है। और अंदर एकदम काला भूत। तो देखो कितना रहस्यमय चित्र है। और अचलगढ़ में है सोने का चित्र रखा हुआ है। क्या मतलब हुआ? कि वह आत्मा याद की स्टेज में अचल बन जाएगी, मन बुद्धि चलायमान नहीं होगी एक सेकंड भी नहीं, स्थिर हो जाएगी। तो आत्मा सोने की बन जाएगी या लोहे की रहेगी? काली सोने की बन जाती है। इसलिए वो अचलगढ़ है तुम्हारा ही यादगार, वो भी यादगार तुम्हारी संपूर्णता की है कि अधूरे पुरुषार्थ की है? है संपूर्ण स्टेज की यादगार है। है तो द्वापर के बाद त्रेता आना चाहिए। अच्छा वो त्रे और वो द्वा, अरे दो पहले होना चाहिए कि त्रे पहला होना चाहिए? ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो देवताएं हैं, चाहे सतयुग के देवताएं हों 16 कला संपूर्ण, चाहे त्रेता के 14 कला संपूर्ण देवताएं हों, वो देवताएं अद्वैत होते हैं या द्वैतवादी होते हैं? दो राजाओं को मानते हैं या एक अद्वैत को मानते हैं? दो धर्म को मानते हैं या एक धर्मावलंबी होते हैं? दो कुल के होते हैं, दो वंश के होते हैं या एक ही वंश के होते हैं? दो मतों पर चलते हैं या एक ही मत पर चलते हैं? उनकी अद्वैत मत है या द्वैत मत है? अरे भारत में कैसे होते हैं? अद्वैत होते हैं कि द्वैत द्वैतवादी होते हैं? जोर से नहीं बोलती माता, समझा नहीं? अद्वैत का मतलब है दो के ऊपर नहीं, तीन चार पांच मतों की तो बात ही छोड़ दो, वो दो की मत पर भी नहीं चलते। कितने की मत पर चलते हैं? एक की मत पर चलने वाले होते हैं। इसलिए अद्वैत हैं, उनको द्वापर युगी नहीं कह सकते। द्वापर युग से द्वैतवादी हो जाते हैं, वो ही देवता हैं। दो दो धर्म अपनाते हैं, दो दो राज्य अपना लेते हैं, दो दो कुल के बन जाते हैं, कोई इस्लामी बन जाते हैं, कोई हिंदू रह जाते हैं, दो दो वंश के हो जाते हैं। तो द्वैतवादी हुए कि एकवादी हुए, अद्वैतवादी हुए हैं? क्या त्रेता के अंत में द्वैतवादी हुए कि अद्वैतवादी हुए हैं? हाँ, तो द्वैतवादी हुए कि अद्वैतवादी हुए हैं?
अद्वैतवादी, ये बात समझती ही नहीं।
आ माने नहीं, द्वैत माने दो, माने दो के वादी नहीं होते, दो को फॉलो नहीं करते। अद्वैत इसको फॉलो करते हैं, एक को। तो वह हैं सतयुग और त्रेता के देवताएं, देवताओं को अद्वैत कहा जाता है। और द्वापर युग से द्वैतवादी हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे दूसरे धर्मों के धर्म पिताएं आ करके प्रवेश करके अपना अपना मत चलाते हैं, तो द्वैत मत आ जाती है। इसलिए उस युग को क्या कहते हैं है? अरे क्या कहते हैं? अरे आजू बाजू के ही बोल दो है, द्वैतवादी का। इसलिए वो द्वापर युग है। त्रेता इसलिए कहा जाता है कि सतयुग में कितनी गद्दियां होती हैं है? आठ नहीं, नौ। संगम युग की क्यों छोड़ दी? अरे संगम युग में पहले नंबर की राजाई होती है या सतयुग से ही पहले नंबर की राजाई होती है? संगम युग से ही पहले नंबर की राजाई शुरू हो जाती है। तो नौ राजाइयां हैं, और त्रेता में कितनी राजाइयां हैं? बारह नहीं, तेरह है। क्या ब्रह्मा जैसी आत्माएं जो सतयुग में आठ जन्म लेती हैं, वो त्रेता में आके कितने जन्म लेती हैं? तेरह जन्म लेती हैं। इसलिए त्रेता कहा जाता है। क्या उसे द्वापर नहीं कहेंगे? वो द्वैतवादी नहीं है, देवताएं तो अद्वैत हैं। और है
भक्ति मार्ग में या धर्मों के लोग जितने भी हैं, वो एक चीज को मानता रखते हैं कि कलयुग में कलयुग ही अवतार होगा, और ब्रह्मा कुमारी ये कहती है भगवान सृष्टि पे आया हुआ है, और शरीर परिवर्तन होने के बाद ब्रह्मा शिव ने जिसमें प्रवेश किया है उस पर कलंक लगाती है, और ये कहती है कि यही यदि पे उस पर कलंक लगाने के दावे करती है, और ये नहीं समझती यही गीता का भगवान है। भले उनमें मुख्य प्रश्न बार बार उठाया जाता है कि गीता का भगवान को ये क्या है, थोड़ा सा बताइए ये क्या बात है कि
तो कहती है कि ब्रह्मा को कलंक लगाए?
नहीं, ब्रह्मा को नहीं, शिव कहती है शिव ऊपर से आए हैं, अवतार लिया है, अब शिव ने दूसरा उपकरण तन लिया है, उसी पे कलंक लगा रहे हैं, और कहते हैं गीता का भगवान को दुनिया से पूछ रहे हैं या दुनिया से बोल रहे हैं गीता का भगवान को।
कहते हैं साकार में गीता का भगवान दादा लेखराज ब्रह्मा ही हुए, और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता।
वो मानते
हाँ
है?
नहीं, गुलजार दादी को नहीं मानते। अगर गुलजार दादी को मानते होते तो जो तीन चित्र बनाए हैं पोस्टरों में, ऊपर शिव दिखाया है, नीचे कुमारका दादी को, बीच में जानकी दादी को, और नीचे इसको गुलजार दादी को। तो गुलजार दादी को नीचे क्यों दिखाते? भगवान है तो ऊपर होगा या नीचे होगा है? हाँ, उनका दिमाग नहीं काम करता। अच्छा हाँ, और हाँ।
ना अंत में जो तपस्या भूमि होगी वो अचलगढ़ होगी या दिलवाड़ा के पास होगी?
कमाल है, अचलगढ़ में तपस्या कर रहे हैं या दिलवाड़ा में तपस्या कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? बाबा ने तो मुरली में ये बोला है, देखो वही तुम्हारा यादगार बना हुआ है और वही तुम देखो बैठ के तपस्या कर रहे हैं। तो जो पांडव भवन है वो तपस्या भूमि हुई या एडवांस वालों ने जो सारा दिलवाड़ा खरीद के रखा हुआ है वो तपस्या भूमि बनेगी? अरे तपस्या कहाँ, तपस्या भूमि कहाँ हुई? दिलवाड़ा होगी, दिलवाड़ा में ही यादगार बना हुआ है, दिलवाड़ा मंदिर को ही सोने की मोहरें बिछा करके सारी जमीन खरीदी गई थी। तब वो ऊपर से दिलवाड़ा मंदिर बनाने में पैसा खर्च किया, इतनी अच्छी पत्थरों की पच्चीकारी कहीं भी देखने को नहीं मिलती। कितने दिन लगे होंगे वो मंदिर तैयार करने में, कितना पैसा खर्च किया होगा? यहाँ कौन सा पैसा खर्च होता है, है? हाँ, ये ज्ञान धन है, ये ज्ञान धन के आधार पर तुम्हारा चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर बनता है। और हाथ तो उठा दो। हाँ बीके और टीबी के दोनों मिलकर के कब होंगे? बीके माना चंद्रवंशी, चंद्रमा की औलाद, कौन है चंद्रमा? ब्रह्मा बाबा। और टीबी के माना प्रजापिता ब्रह्मा, सूर्य की औलाद, सूर्यवंशी। सूर्यवंशी कृष्ण को बोला है मुरली में और राधा को चंद्रवंशी बोला है, वो दूसरे वंश की और वो दूसरे वंश का। कृष्ण ऊंचे कुल का सूर्यवंशी और राधा चंद्रवंशी। तो सूर्यवंशी कृष्ण चंद्रवंशी राधा के यहां कैसे जावेगा? जावेगा है? अरे आज जो ब्राह्मणों में परंपरा चल रही है उत्तर भारत में, लड़का जाता है लड़की को ढूंढने या लड़की के घर वाले आते हैं ढूंढने? हैं? नीचे कुल वाले ढूंढने जाते हैं या नीचे कुल वाले ढूंढने जाते हैं? नीचे कुल वाले ढूंढने जाते हैं। ऐसे ही है ना, ये परंपरा कहां से शुरू हुई है? ब्राह्मणों की दुनिया से ही सारी परंपराएं शुरू होती हैं। क्या गीता में भी कहा है, मैं जैसे कर्म करता हूं अनुवर्तते लोको, सारे लोग मेरा अनुवर्तन करते हैं। तो भगवान जब आते हैं सूर्यवंशी की स्थापना करते हैं तो सूर्यवंशी कृष्ण नहीं जाता है राधा के यहां, किसको आना पड़ता है? राधा को ही आना पड़ता है। तो जब राधा आएगी तब होगा। तो कहावत बना दी है दुनिया में, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। क्या मतलब हुआ है? अरे नौ धर्मों की बीज रूप आत्माएं जब तक इकट्ठी ना हो जाएं तब तक राधा का आगमन नहीं होगा। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। ये अंत की निशानी है। आप पूछते हैं ये बीकेपी बीके मिलकर के कब एक होंगे? क्या कब एक होंगे? अद्वैत वाणी में तरीका तो बता दिया, क्या तरीका बताया? विजयमाला का आवाहन करो। विजयमाला माना शहद की मक्खियों का झुंड, शहद की मक्खियों का झुंड को आवाहन करना है। दुनिया में आवाहन करते हैं तो क्या करते हैं? है? अरे जंगल में शहद की मक्खियों का बड़ा झुंड है और उसका कोई अपने घर में आवाहन करना चाहता है तो क्या करता है? रानी मक्खी को वहां से उठा लेता है। तो रानी मक्खी के पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है। ये मुरली में भी बोला है कि रानी मक्खी जब निकलती है तो शहद की मक्खियों का सारा झुंड उसके पीछे पीछे चला जाता है। आपको भी डायरेक्शन दिया, क्या? विजयमाला का आवाहन। अब ये आपको डायरेक्शन दिया या उन चंद्रवंशियों को डायरेक्शन दिया जिनके अंडर में वो काम कर रही है? किसको डायरेक्शन दिया है? वो क्या आवाहन करेंगे? उनकी तो समझ में भी नहीं आएगा बाबा ने क्या कह दिया, विजयमाला का आवाहन करो। आप समझ गए कि रानी मक्खी का आवाहन करेंगे तो क्या होगा? हैं? सारी रानियों का झुंड खींचा चलाएगा।
जब से बच्ची किया है
हाँ।
तो एक संकल्प लिया है उनका आह्वान करके बुला लेंगे।
अच्छा।
5 साल में उसके साथ रही हूँ।
हाँ।
वेदांत के
हाँ।
बहुत मानते हैं।
हाँ। फिर क्या हुआ?
तो अभी आह्वान शुरू कर दिया है, देखिए
हाँ।
क्या होता है।
लेकिन किन किन लगी हुई है? बाबा ने एक के लिए नहीं कहा, संगठित शक्ति से आवाहन करना है या एक की बात है? अच्छा, बड़ौदा की महाराजा है, छोटेदा या बड़ौदा है? बड़ौदा बड़ेदा है। अच्छा, और
बाबा मान गोपन जी ने जो कृष्ण की अष्टमी मनाते
हैं,
जो मान गोपन जो है ना वो भी गोकुलाष्टमी मनाते हैं, कृष्ण का ही जन्मदिन मनाते
हैं।
लेकिन वो मान गोपन थी, लेकिन
हाँ
मानवपंथी, लेकिन
मानवपंथी हाँ
होता है
हाँ।
तो
उसका
वो भी
क्या मनाते हैं?
जन्माष्टमी कृष्ण की मनाते,
कृष्ण की ही जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन मानवपंथी काली मूर्ति रखते हैं।
महानुभव ये नाम है।
महानुभव महा माने बड़ा, अनुभव माने बड़ा अनुभव। तो वास्तव में वो महानुभव कौन हुए? महानुभाव है वो, दुनिया के बड़े से बड़े भावना वाले कौन हुए? महानुभाव, महानुभवी। दुनिया के बड़े से बड़े अनुभवी जो पूरे 84 जन्म लेंगे वो होंगे, या जो कम जन्म लेंगे वो होंगे? तो कौन लेते हैं पूरे 84 जन्म? सूर्यवंशी लेते हैं। जो सूर्यवंशी पहले वंश के हैं दुनिया के, वो ही महानुवंशी हैं। वो जन्माष्टमी में मनाते हैं तो भी मूर्ति किसकी रखते हैं? है? कृष्ण की मूर्ति रखते हैं। वो कृष्ण की मूर्ति ब्रह्मा बाबा की यादगार है या किसी और की यादगार है? हैं? कोई कह रहा है ब्रह्मा बाबा की यादगार है? हैं? जो संगम में कृष्ण के रूप में पार्ट बजाता है, नाम क्या दिया? कृष्ण। कष्ट माने खींचने वाला, सबको खींच लेता है। अरे भागवत बनाई दी है, कितनों को भगाया है? 16,000 को भगाया। क्या दुनिया वालों की तरह हाथ पकड़ पकड़ के भगाया है? कैसे भगाया है? दुनिया वाले तो हाथ पकड़ पकड़ के भगाते हैं, उसने कैसे भगाया? अरे ये बुद्ध रूपी हाथ है क्या? जैसे हाथ से कोई चीज पकड़ी जाती है, बुद्धि से भी कोई बात पकड़ी जाती है, तो ये बुद्ध रूपी हाथ से आकृष्ट किया क्या? आकृष्ट करके माने खींच करके उनकी बुद्धि को समर्पित करा लिए, उसको कहते हैं कृष्ण। लेकिन जो दूसरों की बुद्धि को आकृष्ट करता है वो अच्छी बात है या खराब बात है? अरे अरे अच्छा शंकर क्या करता है? अरे ये भी नहीं मालूम शंकर क्या करता है, क्या करता है? विनाश कराता है। करता है कि कराता है? कैसे कराता है? तोप बंदूक छोड़ देता है, उसके पास एटम बम है जो छोड़ देता है? नहीं, क्या करता है? हैं? हाँ, शक्तियों को ऐसी प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है उनकी बुद्धि को कि वो विनाश कराए देती है। तो सारा काम, सारा कमाल बुद्धि का है। सबसे ज्यादा बड़ी शक्ति क्या है? है गीता में कहा इंद्रियाणे परान्याहो, ये इंद्रियां बड़ी प्रबल है। प्रबल है या नहीं है? जबरदस्ती काम करा लेती है कि नहीं करा लेती है? है उस समय बुद्धि सोचती ही नहीं है क्या कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कर लेती है। तो इंद्रियां बड़ी प्रबल है। इंद्रियाणि परान्याहु हैं, इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से परे मन की शक्ति है। क्योंकि इंद्रियां तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक मन उनका सहयोगी न दे, सहयोग न दे। जैसे बाबा ने मिसाल दिया, क्या मिसाल दिया? कोई लवर है, महबूब है, कारखाने में जा रहा है, कोई महबूबाओं की याद में जा रहा है, होता है ना ऐसे? आंखें खोल के जाता है कि बंद करके जाता है? आंखें खोल के जाता है, आंखें तो खुली हुई है, आंखों रूपी इंद्रियां तो काम कर रही हैं, बंद तो नहीं है। कारखाने में पहुंचता है, कोई पूछता है भाई जी तुम इतनी दूर से आए, तुमने क्या क्या देखा रास्ते में? तो कहता मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। अब ज्यादा पीछे पड़ेगा तो बताएगा ऐसी बात थी, मैं उसकी याद में था तो मुझे कुछ पता नहीं कि मैं किसको किसको देखा। माना उसके मन ने आंख का साथ दिया कि नहीं दिया? आंख का साथ दिया? नहीं दिया, इसलिए उसने कुछ नहीं देखा। हैं? हाँ जी, भले आंखें बड़ी प्रबल हैं, इंद्रियों में सबसे जास्ती धोखेबाज कौन सी इंद्रिय है? आंखें। लेकिन वो भी काम नहीं करती। वो आंखें भी काम कब करती है? जब मन काम दे, मन उसका सहयोग दे। इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः, और फिर बोला मनस है परे बुद्धि, मनसा से भी परम है बुद्धि, जो मन को भी कंट्रोल कर लेती है। इंद्रियां तो अपने आप कंट्रोल हो जाती है, और बुद्धि से भी जो परे है, बुद्धि से भी परे है सो बताया सह। बुद्ध्या परसस्तु सह, सह माने वह, कौन वह, वह कौन है? शिव बाबा। बुद्धिमानों की बुद्धि है कि नहीं, है कि नहीं? बुद्धिमानों की बुद्धि शिव, और बुद्धिमान कौन है? जो मन को भी कंट्रोल कर लेता है, जो विश्व पिता बनता है, मन जीते जगत जीत बनता है। तो मन से भी ज्यादा वो प्रबल हो गया जिसको त्रिनेत्री दिखाया जाता है। तीसरा नेत्र किस बात की यादगार है? कौन सा नेत्र है तीसरा? अरे ज्ञान का, बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र है। किसको दिखाया जाता है? शंकर को दिखाया जाता है। तो वो बुद्धि है, बुद्धिमान है। उस बुद्धिमान से भी परे कौन है? वो है शिव बाबा जिसे कहते हैं। तो क्या करना है? इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या करेंगे? हैं? जो परे थे परे है उसी को याद करना है। और वो परमधाम में बैठा है या यहां काम कर रहा है? मुरली में बोला है जो मुझे ऊपर याद करते हैं वो है शूद्र संप्रदाय।
हो
भैया, साकार निराकार को अलग करके देखते हो या एक करके देखते हो? क्या करेंगे? एक करके देखेंगे, साकार में ही निराकार को देखेंगे। अगर अलग अलग करके देखते हैं, समझते हैं कि साकार नीचे है और निराकार ऊपर है, और उसे ऊपर याद करते हैं, तो बाबा कहते हैं कौन सा संप्रदाय? शूद्र संप्रदाय।
याद पहुंचती
ही नहीं, कहां तो कहां जाती है याद?
साकार में याद करे तो ही पहुंचे,
साकार में जाती है। अच्छा, अच्छी बात है। हाँ, और हाँ,
शंकर पार्वती है तो उनका पार्थ तो संगम में है ना, शंकर पार्वती सचिव तो उनका पार होगा नहीं।
अरे ये बताओ, कृष्ण पहले जन्म में महाराजा बनता है, बनता है कि नहीं? उनका पार्ट सतयुग के आगे के जन्मों में होगा कि नहीं? अरे बताओ तो, होगा? कृष्ण का पार्ट होगा ना, महाराजा का ही पार्ट होगा कि नीचे उतरते जाएंगे?
बाबा ने बोल दिया बुद्धि
का है, आठों जन्म में महाराजा का पार्ट होगा कृष्ण वाली आत्मा का। ऐसे नीचे उतरते जाएंगे, ऐसे ही संगम युग में जो विश्व का मालिक होता है वो ऊंचा होता है, वो देने वाला दाता बनता है, और कृष्ण लेने वाला लेता बनता है। संगम युग में वो विश्व का मालिक जिसे नारायण कहते हैं, वो संगमयुगी नारायण जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है, वो कृष्ण को जन्म देने वाला रचयिता है। रचयिता ऊंचा होता है या रचना ऊंची होती है?
रचयिता ऊंचा,
रचना लेने वाली होती है या रचयिता लेने वाला होता है रचना से? हैं? रचना लेती है। तो जो एक बार संगमयुग में ऊंचा बन गया, वो अगले जन्म में क्या होगा? उसका पार्ट ऊंचाई बनता रहेगा, बच्चों को कुछ नहीं देगा, अपनी पीढ़ी को देगा या नहीं देगा? है, हर एक आदमी चाहता है हमारी पीढ़ी इधर पीढ़ियां क्या बनी रहे, सरसब्ज बनी रहे। ये चाहना अच्छी चाहना है या खराब चाहना है? ये ब्रह्मा विष्णु शंकर है, ये तीनों पार्टधारी संगम युग के हैं या सतयुग के हैं? संगम युग के पार्टधारी हैं। ये संगम में जो शंकर कहा जाता है वो एक आत्मा का पार्ट है, यह पार्ट सारियों का संकरण है,
मिक्स पार्ट है, मिक्स
पार्ट, तीन आत्माओं का, तीन पार्टधारियों का संकरण है, इसलिए शंकर कहा जाता है, एक आत्मा का पार्ट नहीं है। और जो शंकर है, तीन आत्माओं का संकरण है, वो याद में रहता है या नहीं रहता है? हैं? याद में रह करके पुरुषार्थ करता है या नहीं करता है? हैं? तो पुरुषार्थ करके, याद करके, याद में रहने वाला जिसकी याद करता है वो ऊंचा है या याद करने वाला ऊंचा है? ऊंचा है। लेकिन जिसकी याद करता है वो तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, उसकी भेंट किसी से नहीं की जा सकती। क्या उसकी भेंट किसी से कर सकते हैं? हैं? उसे परम पदधारी कह सकते हैं, परम पद, महान ते महान, परे ते परे पद प्राप्त करने वाला कौन है? शिव है। वहां पद होते हैं क्या? है, वहां तो स्मृति ही नहीं रहती। कहां? परम धाम में। तो ऊंच और नीच की स्मृति कहां रहती है? साकार सृष्टि में, यहां परम पद बनता है। दुनिया में जितने भी ऊंचे थे ऊंचे पदाधिकारी हैं, उनमें सबसे ऊंचा पद विष्णु अर्थात नारायण का है। हाँ बोलो। हाँ तो आगे जन्मों में नीचे जाएगा या ऊंचाई बनता रहेगा? अरे हर बाप की क्या इच्छा होती है, मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी में जो आने वाले बच्चे हैं वो सरसब्ज बने रहें या नीचे गिर जाएं? हैं? सरसब्ज बने रहें। जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप के ऊपर जीत पाते हैं तब माँ बाप के बच्चे बनते हैं, या हार खाते हैं माँ बाप वाली आत्माओं से कर्मों में तब माँ बाप के बच्चे बनते हैं? हाँ, जहां जीत वहां जन्म। तो जरूर संगम युग में उन आत्माओं ने भी राम वाली आत्मा पर पुरुषार्थ के ऊपर पुरुषार्थ करते करते जीत पाई है, कर्मों में ज्यादा सेवा की है। राम वाली आत्मा ने उस समय उतनी सेवा नहीं की है, तो उनको ऊंच पद नहीं मिलना चाहिए। बोलो। है? अरे मिलना चाहिए कि नहीं?
मिलना चाहिए।
किनका? अरे नारायण वाली आत्मा को ही सतयुग में दिखाया गया है, 84 जन्म लेने वाली, फिर वही शंकर वाली आत्मा। शंकर उसे तब तक कहा जाता है जब तक पुरुषार्थी जीवन है, याद करता है। और नारायण याद करेगा? है, नारायण को याद करने की जरूरत है नहीं, वो तो विष्णु बन गया, परम पद मिल गया, विश्व का मालिक बन गया, उससे ज्यादा ऊंचा पद किसी का होता ही नहीं। और
पांडवों में पांडु की दो पत्नी थे, कुंती और माती।
पांडवों की पत्नियां हैं?
पांडु राजा
है,
पांडु राजा,
पांडु। हाँ,
उनकी दो पत्नी है कुंती और माद्री। कुंती से जो तीन हुए और माद्री से तीन है, तो बेहद में कुंती,
माद्री से तीन नहीं हुए, दो हुए। हाँ हाँ,
तो बेहद में कुंती और माद्री कौन?
हाँ, छोटी माँ कुंती नहीं है? है? कुंत, कुंत माने पर। ज्ञान योग के जिसको पंख हैं उसका नाम पड़ा है कुंती। एक कथा आई है शकुंतला, किसके तला? शकुनी के तला। जब वो ऋषि मुनि आकर के उसे जंगल में से गोद में उठाते हैं तो देखते हैं पक्षी ही उसकी रक्षा कर रहे थे, शकुनी माने पक्षी, तो नाम क्या दे दिया? शकुंतला। तो शकुनी माने पक्षी, उसका भी नाम कुंती है, कुंतला। तो कुंती का पार्ट अच्छा है या द्रौपदी का पार्ट अच्छा है? है कुंती का अच्छा पार्ट है, कुंती माँ है उन पांडवों की, जो श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले हैं। कौन है श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले धर्म? भारतीय धर्म है। अरे एक युधिष्ठर, दूसरा भीम, तीसरा अर्जुन, बुद्धिमान नर अर्जुन। भारतवर्ष में जो दशावतार दिखाए गए हैं या 24 अवतार दिखाए गए हैं उनमें बुद्ध का नाम है या नहीं है? महात्मा बुद्ध का भी नाम है। क्यों? क्यों उन्होंने ऐसी बुद्धिमानी का काम किया, ऐसा ज्ञान संसार में फैलाया जिस ज्ञान के आधार पर कोई पाप नहीं बनेगा, अहिंसा परमो धर्म। तो अच्छा ज्ञान दिया या खराब ज्ञान दिया है? भले वो आत्मा का जिक्र नहीं किया, किसने? महात्मा बुद्ध ने कहीं भी आत्मा का जिक्र नहीं किया, परमात्मा का जिक्र नहीं किया, षष्ठी चक्र का भी जिक्र नहीं किया। वो भगवान को भी किसी को नहीं माना उन्होंने, इसलिए बौद्ध धर्म वाले नास्तिक बन पड़े। फिर भी सात्विक स्टेज में उनका ज्ञान इतना श्रेष्ठ था, तो ये बुद्धि का कमाल है या नहीं है? है, ये बुद्धि का कमाल हुआ। इसलिए कहा अर्जुन का जो पार्ट है वो संसार के हिसाब से बौद्ध धर्म की आत्मा का है। और
ये भारत का जो पूरा बंजारण जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, भारत का पूरा बंजारण कायदा कानून
है, राजधानी, हाँ है कायदे कानून, हाँ।
तो मुरली में जिक्र था, वो मुरली अभी मेरे पास नहीं है, मुरली में उसका जिक्र था,
हाँ जिक्र है। दिल्ली में जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है उसमें एक श्लोक में लिखा हुआ है, बाबा ने मुरली में जिक्र किया इस बात का। उस श्लोक में ये कहा गया है कि दिल्ली राजधानी किसने स्थापन की? युधिष्ठिर ने, धर्मराज ने। तो धर्म का राजा कौन हुआ है? धर्म माने धारणा, धारणाओं का राजा कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा,
शिव बाबा।
शिव बाबा, अरे कोई ना कोई तो होगा ये है
बाबा। मुरली में बोला धर्मराज दो हैं।
धर्मराज दो हैं, कौन कौन?
एक तो ब्रह्मा बाबा और एक शिव बाबा।
एक ब्रह्मा बाबा, एक शिव बाबा। धर्मराज डंडे भी खिलाता है, शिव बाबा। अरे शिव बाबा तो प्यार का सागर है, क्यों बदनाम करते हो है? जो मन में आया सो बोल देते हो। अरे धर्मराज को तो भैंसे के ऊपर सवार दिखाया है, कहां भैंस बुद्धि, भैंसा बुद्धि, और कहां शिव बाबा। और अच्छा ओम शांति।